शुक्राचार्य
क्या दबा
राक्षसों के गुरु थे। एक है देवताओं को पढ़ाने वाला गुरु और उसके मुकाबले है असुरों को पढ़ाने वाला गुरु। शुक्राचार्य एक आंख से ताने दिखाए जाते दोनों आंखें होना अच्छा है या काना होना अच्छा है?
एक दोनों
आंखें होनी चाहिए। गुण देखने की भी आंख चाहिए। गुणों का वर्णन करना होता है और अवगुण की भी आंख चाहिए परंतु अवगुण का वर्णन नहीं करना है। अपने गुण भी देखना चाहिए और पराये गुण भी देखना चाहिए। उनका वर्णन करके गुणों में वृद्धि करनी चाहिए परंतु शुक्राचार्य की एक आंख गुण दर्शन की कहानी होती है। अपने भी देवान का वर्णन करेंगे और दूसरों के भी अवगुणों का वर्णन करेंगे।
बाबा काली मानो कटे
कहानी
है
अंधे नहीं है एक आंख से काने अब गुण की आंख खुली हुई है और गुणों को देखने की आंख बंद है। अब अपने अपने में देखना है। शुक्राचार्य के फॉलोअर हैं या शिवाचार्य के फॉलोअर हैं? कहने की बात नहीं है देखना है। और
बेसिक से एडवांस में आना डायरेक्ट एडवांस में आने का फर्क
डायरेक्ट कोई एडवांस में आते नहीं। इस जन्म में नहीं बेसिक लिया होगा तो पूर्व जन्म में बेसिक में रहे होंगे। कोई 70 साल के 80 साल के बुढ़े हैं सन 36 से पहले जन्म लिया है और वो डायरेक्ट एडवांस में आ जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? भले वो है बेसिक में पूर्व जन्म में नहीं चले इस जन्म में नहीं चले परंतु उससे पहले के जन्मों में उन्होंने बाप का संग किया इसलिए संग का रंग ऑलरेडी लगा रहता है। थोड़ा सा सुनने मात्र से ही एडवांस में आकर्षित हो जाते हैं और
लौकिक में ब्राह्मण जो है वो सबसे दान लेते हैं वो किसी को दान नहीं देते।
ब्राह्मण किसी को दान नहीं देते
वो किसी को दान नहीं सबसे दान लेते
हैं।
लौकिक में ब्राह्मण
ब्राह्मणों का कर्म ही है दान लेना और दान देना। वेद के ब्राह्मण ज्ञान का दान लेते हैं और ज्ञान का दान लेते हैं और लौकिक दुनिया में
लेते हैं वो
धन का दान लेते हैं
लेते
हैं। उसको ब्राह्मण है जो देते भी है और लेते भी है। हाँ जी
बाबा, निरंतर 8 घंटा का याद सिर्फ अष्टदेवों के लिए होगा या नंबर वाला?
निरंतर उन्हीं का होगा जिनका 63 जन्मों में संघ के रंग का अंतर नहीं पड़ा होगा। बनी बनाई बन रही अब कुछ बन नहीं ना। 63 जन्मों में जिन्होंने जिनका संग किया है उन्हें उनकी याद जरूर आवेगी।
नया संगठन आने के लिए पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए?
नष्ट हुआ स्मृति लगता पहला पुरुषार्थ
आ सकते माता ही आ सकते
है? माताएं का अगर मोह का बंधन छूट जाए तो समझो माताएं पास हो गई।
बाबा ये कैसे तुम बता रहे हैं मोर जो है वो 3 ही बार उड़ता है इससे ज्यादा नहीं उड़ता है,
है?
उसका मतलब?
इसका मतलब ये है कि कृष्ण के मस्तक में मोर पंख लगाया जाता है माने उनके देह अभिमान की पूंछ जो है कौन से पक्षी की दिखाई जाती है? राष्ट्रीय पक्षी मोर की दिखाई जाती है। वो राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
मोर
जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ता है और 3 बार ऊंची उड़ान उड़ता है। जो मोर पक्षी को पकड़ने वाले होते हैं वो जानते हैं कि एक बार उड़ जाएगा हाथ नहीं आएगा, दूसरी बार उड़ जाएगा हाथ नहीं आएगा, चलो तीसरी बार भी उड़ जाएगा हाथ नहीं आएगा, लेकिन चौथी बार में वो उड़ नहीं सकेगा। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। राष्ट्रीय पक्षी की हत्या करना भारी जुर्म माना जाता है। कहाँ की बात है?
संगम में।
कैसे?
अभी अभी एक मोहल्ले में आए थे ब्रह्मा कुमारी, तुम ब्रह्मा कुमारी का नाम का था पहले पीपी लगाना है, पीपी माना प्रजा पिता ऐसा कर दिया
पीपी लगाना है।
यू नहीं बोला पीपी बोला
पीयू बोला
सामने पहला
पीपी बोला बाबा
और नीचे बैठ जाओ।
उसको क्लैरिफिकेशन दिया प्रजा पिता ने बोला ब्रह्मा बाबा कैसा साधारण हो सकते
हैं?
ब्रह्मा बाबा साधारण हो सकते
हैं? कैसे साधारण हो सकते हैं? साधारण थे साधारण पाठ था उनका, वेशभूषा वो तो साधारण था, धोती कुर्ता था, लेकिन शरीर से साधारण थे या साधारण सौंदर्यवान थे? और धन से
असाधारण,
दुनिया के हिसाब से साधारण थे या असाधारण थे? साधारण कैसे कहा जाए? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बीच में उनका मान मर्तबा था, तो साधारण थे या असाधारण थे?
बाद में साधारण हो गए
ना
बाबा,
बाद में साधारण हो गए,
हाँ जी
लेकिन
चौरासी जन्म का 50 साल खत्म हो जाते हैं।
2000
कितने साल खत्म हो जाते? 50 साल उनके पूरे होते हैं, माना शरीर छोड़े।
हाँ। फिर वो कभी जन्म लेते हैं 18 में क्या 36 में?
सूक्ष्म शरीर भी गिना जाता है, उनका सूक्ष्म शरीर तब खलास हुआ, कब से खलास माना जाए? नहीं, कैसे नहीं खलास हुआ? बच्चा जो है जब शरीर छोड़ देता है और बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है, बच्चे के रूप में जन्म लेने से पहले वो सूक्ष्म शरीर से दूसरी आत्माओं में दूसरे व्यक्तियों में प्रवेश कर सकता है, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर त्याग करके जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद भी वो कभी हंसता है अपने आप और कभी अपने आप रोता है। वो इसको कितना भी हंसाने का प्रयत्न करे नहीं हंसेगा, नहीं रोएगा, लेकिन अपने आप रोता है, अपने आप हंसता है, कहाँ की स्मृति में चला जाता है? पूर्वजन्म की स्मृति में चला जाता है। तो जो पूर्वजन्म की स्मृति में जाता है उसे सूक्ष्म शरीर कहे या न कहे? मन बुद्धि से सूक्ष्म शरीर की स्मृति में चला जाता है। मना सन 87 में 100 वर्ष उनका सूक्ष्म शरीर का पूरा होता है और गर्भ में प्रवेश होता है। जो ज्ञान गर्भ की यादगार है शास्त्रों में, पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण बड़े आराम से गर्भ महल में पड़ा हुआ है। ब्रह्मा की आयु कितने साल? 100 साल। पहले ब्रह्मा की आयु या दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु? उनकी भी 100 साल। वो कब पूरी होती है? 68 में उनका साकार शरीर छूटा, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रह गया। कब तक रहा?
अभी भी है ना बाबा, बच्चा जन्म प्रवेश करता है।
अभी मिसाल दिया ना, बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में प्रवेश कर जाता है, तो क्या सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर जाता है क्या?
नहीं,
जन्म लेने पर भी और गर्भ में प्रवेश करने पर भी वो पूर्वजन्म की स्मृति में जा सकता है। ऐसे ही उनका स्थूल शरीर और उनका सूक्ष्म शरीर दोनों की आयु कब पूरी हो गई? 87 में पूरी हो गई। इसलिए 87 के नजदीक आसपास वो एक साल आना भी बंद हो गया। और
कॉन्फ्रेंस वालों को सर्विस करने के लिए
کانفرنس کرنے کے لیے نہیں بولا،
کرنے والوں کو سروس کرنے کے لیے،
ہاں ان کو سمجھانے کے لیے بولا،
لیکن وہ سمجھا نہیں تھے، وہ ادھر جا کے بولا بزر دادی بتا شو بابا نہیں ہے کیسا
نہیں آنا، یہ تو شنکر کا پٹ ہے۔ جو بات ہم جانتے ہیں کہ سیدھی سیدھی یہ بات پہلے ان کو سنانے سے ان کو کرودھ آ جائے گا، تو وہ بات ہی ہم پہلے کیوں سنائیں؟ ایسی بات سنائیں نا جو ان کو اچھی لگتی ہو، جن سے ان کا امنگ اتساہ بڑھتا ہو۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو میٹھی چیز اچھی لگتی ہے، اور ہم اس کو زبردستی کڑوا انجیکشن دے دیں، کڑوی دوائی دے دیں، تو وہ تو جھٹکائے گا نا۔ یہ بھی دہبان ہے، جان دوسروں کو سکھ دینے کے لیے ہوتا ہے یا دکھ دینے کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو اپنی باچا سے دوسرے کو سکھ دے سکے، اپنے کرم سے دوسرے کو سکھ دے سکے، اپنے وائبریشن ماتر سے دوسرے کو سکھی کر سکے۔ اگر کوئی آتما دکھی ہو جاتی ہے ہمارے نمت سے، تو سمجھنا چاہیے ہمارے اندر گیان نہیں ہے، دیبان ہے۔ ہت آنا ہت پشو پکشی اجانا مانس تن گن گیان ندھانا۔ پشو اور پکشی ہوتے ہیں وہ بھی اسنے کی درشٹی کو پہچان جاتے ہیں، اسنے کے وائبریشن کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو کوئی کو بھی گیان سناتے سمے ہمارے اندر بھرپور شبھ بھاونا اور شبھ کامنا ہونا چاہیے۔ ہم شانتی کے ساگر باپ کے بچے ہیں، تو ہمارے شانتی کے وائبریشن ایسے ہوں کہ ہمارے سامنے آنے والی آتما شانتی میں ڈوبنے لگے، اشانت آتما بھی شانت ہو جائے۔
वसुदेव देवकी कृष्ण को प्रत्यक्षता जन्म देते हैं ना, लेकिन बुद्ध विकारों के जेल के बाहर नहीं आ सकते
हैं,
इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है, जन्म देने का मतलब पहले समझना पड़े। जन्म देने का मतलब क्या है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में एडवांस पार्टी मैं संगमयुगी कृष्ण भी है, जो पीपल के पत्ते पर दिखाया जाए अथवा जिसका जन्म दिखाया जाए, जन्म देने वाले माता पिता विकारों का अनुभव करते रहे, और कृष्ण निर्विकारी स्टेज का अनुभव करता है। कृष्ण के माँ बाप जो प्रत्यक्षता करते हैं वो ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म। सतासी में ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी होती है, 100 साल पूरी आयु होने के बाद ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में बिजली सी कौंध जाती है और कृष्ण का प्रवेशता रूपी जन्म हो जाता है गर्भ में। ये प्रत्यक्षता करने का निमित्त तो कोई तो बना होगा। जो प्रत्यक्षता हुई वो भारत के किस हिस्से में हुई, किस हिस्से की आत्माओं ने पहले जाना?
कर्नाटक।
संगम की कृष्ण कहो नेक्स्ट टू गॉड, प्रजापिता कहो नेक्स्ट टू गॉड, नारायण बनने वाली आत्मा कहो नेक्स्ट टू गॉड, वो प्रत्यक्ष हो चुका है। देश के किस हिस्से के लोग थे? दक्षिण भारत के। उन दक्षिण भारत की आत्माओं को ज्ञान का बीज डालने वाला कोई तो होगा। कर्नाटक में, कर्नाटक वालों की बुद्धि में ज्ञान का बीज डालने वाला कोई तो होगा।
दिल्ली वाले
ज्ञान तो दिल्ली से आया ना, एडवांस ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से। तो कोई तो निमित्त बना होगा। जो निमित्त बना वो इस समय खुद विकारों की जेल में है, बंधन में है या निर्बंधन है?
बंधन में
है। अज्ञान में है या ज्ञान में है? अज्ञान में। इसलिए दिखाया जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव और देवकी जेल में पड़े रहे और कृष्ण मुक्त हो गया। थोड़े समय के लिए बाप जब उनको ट्रांसफर करता है तो वो भी जेल से बाहर हो जाता है, माना वो भी भट्टी कर लेता है, भट्टी करता है और फिर विकारों की जेल में चला जाता है। ऐसा होता है ना, शास्त्रों में यही दिखाया है ना कि वसुदेव भी जेल में पड़े रहे। जेल में पड़े रहे या जेल से बाहर आए? बाहर भी आए लेकिन थोड़े समय के लिए।
बाबा यह ज्ञान में राम को राम का कठोर पाठ कहा जाता है स्ट्रिक्ट
है
और शास्त्रों में राम को सौम्य रूप में दिखाया है।
जैसे
शास्त्रों में
नियम कानून का स्ट्रिक्ट दिखाया गया है या लूज दिखाया गया है? जो भी नियम कानून है, चाहे समाज के हो चाहे सरकारी नियम कानून हो और चाहे प्राकृतिक नियम कानून हो, उन कानूनों पर दृढ़ता से चलने वाला दिखाया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है या थोड़ा लूज दिखाया गया है?
मर्यादा
स्ट्रिक्ट दिखाया गया है। इसलिए संगम युग में त्रिमूर्ति में तो दोनों चित्र दिखाए, ब्रह्मा को लीनेंसी की बैठक में बैठा हुआ दिखाते हैं, सहज आसन है, और शंकर को स्ट्रिक्ट बैठा हुआ दिखाया गया। और
अब जयद्रथ अर्जुन को जयद्रथा को नहीं मारते तो मारना पड़ता था, लेकिन कृष्ण ने दिन को रात
गुप्पी भी देखते हैं
है? सुनो जयद्रथा को अपने हाइट
अब बोल ली है और ऑब्जेक्ट वाणी में भी कुछ आया है, टीवी में ही आया है। ये सब कहाँ से उठाया है?
कहानी
में बोले रामायण भागवत और महाभारत में जो कुछ लिखा हुआ है
वो तुम
समंगम युग के प्रैक्टिकल पार्ट से टैली कर सकते हो। ये नहीं कहा टैली करना है, क्या कहा? कर सकते हो। ये भी बता दिया बाप शास्त्रों का भूसा नहीं सुनाते हैं। शास्त्रों में जो सार है वो बाप सुनाते हैं, बाकी सब शास्त्रों में क्या भरा हुआ है? भूसा भरा हुआ है। तो जो बाप सुनाते हैं उसमें बुद्धि लगाना अच्छा है या भूसे में बुद्धि लगाना अच्छा है?
सार
में। बोला है रामायण तो ऐसे है जैसे कि उपन्यास, और बोला है दुनिया की मनुष्यों की सबसे जास्ती दुर्गति होती है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से। तो नमक मिर्च मिसाला बहुत मिलाया जाता है दुनियावी तौर तरीकों का, तो वही बातें बुद्धि में याद आती है।
राम सेतु का बहुत नाम आ रहा है,
है?
राम और राम सेतु का नाम बहुत आ रहा है।
हाँ जी,
इसका मतलब
यादगार बनाया हुआ है ये राम जी ने सेतु बनाया, पुल बनाया, पत्थरों का पुल बनाया, ज्ञान रत्नों का पुल बनाया या पत्थरों का पुल बनाया? नहीं, दो बंदर थे, उन बंदरों के बुद्ध रूपी हाथ से जो भी पत्थर आता था, पत्थर बुद्धि आता था, वो भारी नहीं रहता था, कैसा हो जाता था? बहुत हल्का फुल्का हो जाता था, अनुभव करता था कि दिमाग हल्का हो गया, शरीर हल्का फुल्का हो गया। तो ऐसे पत्थरों से पुल बनाया जो यादगार दिखाई गई। अभी वो पत्थरों का पुल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भक्ति मार्ग। क्या वो पत्थरों का पुल गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसको तोड़ दिया जाए। यहाँ पत्थर बुद्धि है कोई जो हल्के हो जाते हैं ज्ञान लेने से? अरे एडवांस पार्टी में है या नहीं है?
है।
उनका जो पुल बनाया हुआ है, सेतु बनाया हुआ है, जो सेतु ज्ञान की बातों को यहां से वहां तक पहुंचा देता है, कहां तक? रावण के राज्य तक पहुंचा देता है। उनको तोड़ने का प्रयास चालू है। और
बाबा, ये माता जी पूछ रही है रामायण में तो राम का सामने लव कुश को युद्ध करते हैं, उसका तो अर्थ क्या?
लव माना प्यार करने वाला, क्या लव माना प्यार करने वाला और कुश माना प्यार तो कम करता है लेकिन कांटा ज्यादा लगाता है। तो दो भाई दिखाए गए हैं राम की औलाद, राम के द्वारा जो राम राज्य स्थापन हुआ उस राम राज्य में वो दोनों भाई जन्म नहीं लिया, पालना नहीं ली, कहाँ पालना ली,
आश्रम
जंगल में। तो द्वापर युग क्या है, जंगल है जहाँ लव और कुश की पैदाइश हो जाती है। इस्लाम धर्म का मुखिया लव और क्रिश्चियन धर्म का मुखिया कुश, ये दो भाई दिखाए गए।
घाटों में खाते
और राम वाली आत्मा की लड़ाई किससे होती है, 63 जन्म इन्हीं विदेशियों से लड़ाई होती है या स्वदेशियों से लड़ाई होती है, विदेशी सभ्यता से ही लड़ाई होती है। तो शास्त्रों में वो लड़ाई दिखाई गई है जिसकी शूटिंग यहाँ संगम युग में होती है। और
परमपिता परमात्मा अभी सिखाने वाले राजयोग से मन अमन हो जाता
है,
ऐसे ही ये सात विदर्भी सन्यासियों ने कैसे वो मन बुद्धि को मिल करके योग करता है, उस प्रभाव शरीर में कैसे प्रभाव पड़ता है,
निल करते ही नहीं। अगर निल करते होते तो उनका भी शरीर रूपी देहवान जलाया जाता, राख कर दिया जाता, वो अपने शरीर रूपी देहवान को पूरा जलाए नहीं पाते। इसलिए ये परंपरा है उनके कुल में कि देह को मिट्टी में मिलाया जाता है, देह अभिमान की मिट्टी में मिलाया जाता है। वो जब संगम युग में ज्ञान में आते हैं तो पूरी आत्मा नहीं बन पाते,
वो कभी भी पूरी
आत्मा नहीं बन पाते। तो संगम युग में वर्षा नहीं लेते, कहाँ वर्षा लेते हैं, सत्युग का 1-2-4 जन्म कम हो जाएंगे। 1-2-4 जन्म का जैसे कि उनमें कला कम हो जाती, देहभान भरा रहता है, तो वो योगी नहीं है संपूर्ण, अधूरे योगी है,
संपूर्ण
नहीं, संपूर्ण योगी बाप के बच्चे। जो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आते, प्रभाव में आकर के प्रजा नहीं बनते दूसरों की, एक से ज्ञान सुनते हैं, विचारी ज्ञान नहीं सुनते। और जो विधर्मियों से प्रभावित हो जाते हैं द्वापर युग में, उनका ज्ञान कैसा हो जाता है, आत्मा का विचारी ज्ञान हो जाता है। इसलिए देहभान पक्का बढ़ जाता है, भगवान भी आ जावे तो भी उनके देहभान को पूरा नहीं निकाल सकता। ये संघ के रंग की बलिहारी है। ब्राड ड्रामा में भी ये संघ का रंग लगता है और शूटिंग पीरियड में भी ये संघ का रंग लगता है। जो जिस धर्म का होगा तो उसी की बात मानेगा। भगवान भी बताने के लिए आवे तो भी नहीं मानेगा। कहते भी है तो ज्ञान तो तुम्हारा सच्चा है, परंतु जब दीदी दादियां मान लेंगी तो हम भी मान लेंगे। इससे क्या साबित हुआ? इसी धर्म के हैं।
बाबा कृष्ण का जन्म कृष्णाष्टमी मानते हैं ना, रामनवमी, राम के जन्म को रामनवमी कहते हैं।
कृष्ण और कृष्ण जैसे सात आठ जो भी बच्चे हैं उनको जन्म दिखाने के बाद, माने सात आठ नारायण प्रत्यक्ष होने के बाद नौवां जन्म राम का दिखाया जाता है। माने बाप के जो भी आठ विशेष बच्चे जो संघ में भी कृष्ण समान है, बाप समान है, वो बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो अंत में नौवां जन्म किसका होता है? बाप का होता है। बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? बाप का विरुद्ध है, फादर सोस सन्स, फादर है सर्वशक्तिमान और बच्चे हैं मास्टर शक्तिमान। तो पहले कौन किसको प्रत्यक्ष करता है? बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। तब तक अंत तक वो स्वयं बाप गुप्त होकर के पार्ट बजाता है। बच्चे कितना भी प्रयास करें बाप को पूरा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जब आठ बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो नौवां बाप स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए राम नवमी मनाते हैं। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है।
क्या हुआ?
क्या हुआ? यही तो हुआ। फादर सन्स को प्रत्यक्ष करता है और बच्चे बाप, बच्चे जब आठ प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो आठ बच्चों की ताकत बढ़ेगी ना, वो बाप को प्रत्यक्ष करते
हैं। कृष्ण जन्म लेते हैं ना, उसका पहले जो पैदा होता है,
कृष्ण के पहले थोड़े ही पैदा होते हैं। पहले सत्युग का कृष्ण पैदा होगा कि बाद में सत्युग के आठ सात नारायण पैदा होंगे? पहले पैदा होंगे। हाँ, नंबर बार बच्चे प्रत्यक्ष होते
हैं। अष्टदेव में साउथ वेस्ट में निकृति होते
हैं,
निकृति होते हैं, उसका मतलब क्या है?
कष्ट से बनता है निष्पत्ति। माना उसका भी नंबर है,
माना अच्छा नहीं है।
उसका चेहरा देखो अच्छा लगता हो तो ये लगा लेना।
फिर अष्टदेव का आठ में कैसा देखते
हैं?
आठ में कैसा है? फिर अष्टदेव भी ऐसा है?
अष्टदेव तो आए ही नहीं अष्टदेव में।
अष्टदेव में वैसा बैंकर भी रहता है।
हैं?
बैंकर भी रहता है।
बैंकर क्या?
अष्टदेव निकृति रूप भयंकर दिखता है ना।
हाँ
इस अष्टदेव में
और तो मुकाबले कुछ भयंकर पार्ट होगा
अंदर का पार्ट
अंदर की बात है बाहर की भी बात है जो अंदर होता है वो बाहर भी आता है
बाबा आत्मा वाला सिख
है
आत्मा वाला सिख
सिख अब ओम कैसा है वो तो टाइम आएगा तो पता चलेगा
महाभारत के साथ संजय को दिखाते
हैं जी
कृष्ण के साथ अर्जुन को दिखाते हैं साथ 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 वो कैसे
हाँ यहाँ भी तो ब्रह्मा बाबा के साथ संजय किसका नाम रखा था है भाई का नाम संजय रखा ना सबसे ज्यादा ज्ञान में होशियार कौन माना जाता था
जगदीश भाई
जगदीश भाई
स्त्री स्त्री दिखाए बाबा
हाँ हाँ जब विजयमाला में जाएंगे तो स्त्री पुरुष रह जाएगा पुरुष कहते हैं दुर्योधन दुशासन को पुरुषों को क्या टाइटल मिला दुर्योधन दुशासन पर जब विजयमाला में ऐड किया जाएगा तो विकारों पर जीत होगी या नहीं होगी विजय हो जाएगा तो दुर्योधन तो शासन कहा जाएगा क्या
नहीं,
नहीं कहा जाएगा तो वो भी स्त्री हो गया है तो अंदर की बात दिखाई गई है कोई बाहर का नहीं बात दिखाई गई है
धर्मराज का
त्योहार मनाते हैं
धर्मराज का त्योहार है बाबा
हाँ
कर्नाटक में धर्मराज का करेगा वहाँ मुस्लिम के दरगाह में जाकर धर्मराज धर्मराज जाता है इसका अर्थ क्या है
धर्मराज
नहीं बाबा धर्मराय
धर्मराय राजा
राजा नहीं राय
राय माने राजा ही होता है
राजा में पांडवों में बड़ा भाई है
पांडवों का बड़ा भाई धर्मराज कारणों का राजा
उनका यात्रा यहाँ विशेष चलता है बेंगलोर से
वो इस्लामियों को विशेष पालना देता है कि नहीं जब पालना देगा तो उनके पास जाएगा आएगा कि नहीं जाएगा उनके पास यात्रा करेगा नहीं बच्चों की देख रेख नहीं करेगा
बाबा
सबसे जास्ती मान मर्तबा बेसिक नॉलेज में किसको दिया गया कुमारिका को मुरली में ये इशारा दे दिया जिनका बहुत मान मर्तबा है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो
है महाकाली शुरू हो गई
शुरू नहीं हो गई तो कुमार का दादी ने हाथ कैसे मिलाई लिया
किसके साथ आती
प्रकृति के साथ
हमारे शरीर छोड़ना माना हाथ मिलाना
शरीर छोड़ना माना हाथ मिलाना नहीं तो उन्हें संदेश ही नहीं सुना संदेश में ये बताया गया कि प्रकृति ने कुमार का दादी के साथ हाथ मिलाया माना जो माया रावण के पांच सिर दिखाए गए हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो पांच सिर जो एडवांस पार्टी का सेतु है उसे नहीं गिरा सकते। जब हम पांच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया रूपी रावण माया का रूप प्रकृति के पांच तत्वों से हाथ मिलाए लेता है, प्रकृति से हाथ मिलाए लेता है तो दुगना से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और पावरफुल बन करके धराशाई करता है। शूटिंग होती है इसलिए बोला साकार देह के बंधन में बंधी हुई प्रकाशमणि की आत्मा उतना तीव्र कार्य नहीं कर सकती थी। अभी उस बंधन से छूट गई, अभी बहुत कुछ देखेंगे, जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा। और
जगदम्बा में प्रवेश करते
प्रवेश करना अलग बात और हाथ मिलाना अलग बात। हाथ माना बुद्धि रूपी हाथ,
हाथ मिलाना माना सपोर्ट करना।
हाँ जी, जैसे दो दुश्मन होते हैं किसी व्यक्ति का दो दुश्मन है और उस व्यक्ति की पावर ज्यादा है, उसके दो दुश्मन है उनकी पावर कम है, तो वो दुश्मन क्या करते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलकर के फिर वार करते हैं
वो एक के ऊपर
वो हिसाब है। क्या पता कि ज्योतिषियों की बात है जन्म लेगी कि नहीं लेगी, याद किसको करती है, ब्रह्मा को याद करती है। अगर ब्रह्मा को याद करती होती तो ब्रह्मा बाबा जब बुलाते थे तो उसे आना भी चाहिए। साकार में ब्रह्मा बाबा गुलजार को बहुत बुलाते थे और वो भाग जाती थी, तो बाबा की इच्छा को कभी पूर्ति नहीं की, इसलिए जब शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी के शरीर में ही प्रवेश कर लिया। और
बाबा अभी कोर्स समझाते समय सारा पॉइंट चेंज हुआ है ना,
समझाते समय सारा पॉइंट चेंज हुआ,
थोड़ा थोड़ा पॉइंट चेंज हुआ,
चेंज नहीं हुआ रिफाइन हुआ।
साढ़े चार वर्ष में भी एक लाख दो लाख बचेंगे और बाकी वापस जाएंगे ना, अब कोर्स में कैसे समझाना होगा,
कैसे समझाना होगा। अरे दूसरे धर्म की आत्माएं जो है वो पहले अपने शरीर को कंचन काया बनाएंगी या बाद में बनाएंगी, तो बाद में बनाएंगी। और सतयुग में जो पहला जन्म होगा उस पहले जन्म की जनसंख्या कितनी होगी, अंत में या आदि में,
अंत में
अगर आज में ही 4.5 लाख हो जाए तो 4.5 लाख बच्चे भी जन्म हो जाएंगे आज में, तो अंत में तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। और
मामा भी लास्ट में शरीर छोड़ देंगे बोले ना
है, जो भी सूर्यवंशी बनेंगे चाहे चंद्रवंशी है सरेंडर होंगे तो क्या बन जाएंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे।
तो मामा
अगर सरेंडर नहीं होंगे हठयोगी है, अपनी हट पर पक्के रहने वाले हैं तो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे, तो शरीर ब्रह्मा।
तो बाबा
शरीर छोड़ा या काबिज रहा, शरीर छोड़ दिया, फिर ब्रह्मा एवर लास्टिंग में जब जगदम्बा का पाठ बजाएगा तो जिसमें प्रवेश करेगा उसमें संघ का रंग आएगा या नहीं आएगा? आएगा।
तो मम्मा शरीर छोड़ देगी, सचिव में शरीर लेगी ना, तो कौन जन्म देंगे?
कौन जन्म देंगे?
राजमाताओं के फोन पे
ऐसा नहीं बात।
हाँ, कैसे?
लाला कृष्ण अप्पा को प्रजापिता
दोनों
जन्म देंगे ना?
ठीक है,
फिर जगदम्बा सही छोड़ देगी ना?
ये जगदम्बा भी सही छोड़ देगी, जगदम्बा का जो साथी मणका होगा वो भी शरीर छोड़ देगा।
छोड़ दीजिए बाबा।
क्यों छोड़ दे? यहाँ तो प्रवृत्ति मार के छोड़ कैसे दे?
रखिए
इसको बाद में रखे।
मम्मा को जन्म देने वाला कौन?
अरे मम्मा के अकेले के पुजारी बनना है, मम्मा के साथ जो 21 जन्म वाला है उसको भी देखना है।
पहले इनको देखते बाद में
लोग
देखेंगे।
है क्या?
अरे साथ ही साथ तो जन्म लेंगे।
मैंने सभी इकट्ठे एक तो जन्म नहीं देंगे ना?
है
इकट्ठे एक व्यक्ति कोई दो लोग जन्म नहीं देंगे।
हाँ, इकट्ठा ही जन्म होगा और इकट्ठी ही मौत होगी। अयो अयो हाँ
क्या बाबा
शिव बाबा को बुद्धि वालों को बुद्धि कहा जाता है।
हाँ जी,
अभी आजकल दुनिया में दुनिया भी दिमाग को ही बुद्धि को ही ज्यादा महत्व देते हैं।
हाँ?
बुद्धि की तरफ भी भाग रहे हैं।
ठीक है,
तो दोनों को कुछ चाहिए
होता है। आज की दुनिया के जो बुद्धिमान है वो दुनिया को गड्ढे में लिए जा रहे हैं, गर्त में लिए जा रहे हैं या ऊंचा उठा रहे हैं? दुनिया का विनाश कर देंगे। आज की बुद्धिमानों की बुद्धि है विनाशकारी, और बाप की बुद्धिमानों की जो बुद्धि कही जाती है वो है स्थापनाकारी। कितना भारी अंतर है। बुद्धिमान तो दोनों हैं, वो तामसी बुद्धिमान है और वो सात्विक बुद्धिमान है।
पूछा
ना बहन
जी, जगदम्बा को
कौन जन्म
देगी?
देखो जो जिस कुल का होगा सो सोचेगा। जगदम्बा के पुजारी जगदम्बा के बारे में सोचेंगे और बात निकालेंगे और बुद्धि तो चलती है ना। जो जो कृष्ण को जन्म देने वाले होंगे उनकी बुद्धि में वो बात चलेगी कि कृष्ण को जन्म देने वाले कौन होंगे, और वो सारा नक्शा उनकी बुद्धि में आ जाएगा। इसकी बुद्धि में कौन सा नक्शा आएगा? जिनकी जिनकी बुद्धि का जहाँ जहाँ कनेक्शन है, तो उसके जन्म के बारे में सोचे। है सब बातों को अभी बता देवे तो आगे चल के क्या बता देंगे? ऐसे ही बोल रहे।
तिरुपति को तिरुमला तिरुपति कहते हैं ना? तिरुमला तिरुपति तिरुमला
कहते हैं तिरुपति। जब लड़ाई होती है दोनों में तो वो कहती है तिरुपति, दूसरी कहती है मेरो नहीं तिरुपति। झगड़ा किस बात का है?
पति का।
झगड़ा इस बात का है कि वो कहती है कि साकार में तो प्रैक्टिकल जीवन में तेरो पति, इंद्रियों से जो मिलन मेला मनाया है प्रैक्टिकल में उस हिसाब से तो तेरो पति है प्रैक्टिकल में, मेरो पति कहाँ है?
बन से तेरो
है
ऐसा बाबा।
अरे दो ही तो है,
है?
वो मन के संकल्पों की बात है, संघ में भी ब्राह्मणों की दुनिया में चलती है, और कोई बोल बोल की बातें नहीं चलती है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई या बातों से सृष्टि रची गई? तो ये संकल्पों की सृष्टि है। संकल्पों की सृष्टि में दो पत्नियां हैं, उनको राजा उत्तानपाद की दो पत्नियों के रूप में भी दिखाया गया, और तिरुपति में भी दो पत्नियों के रूप में दिखाया गया। राजा उत्तानपाद की काम्पल्य नगर का राजा, उसकी दो पत्नियां सुरुचि और सुरली थी। सुरुचि माने अपने रुचि पूर्वक चलने वाली, क्या ईश्वरीय नीति नियम मर्यादा को माने या न माने, लेकिन अपनी रुचि पूर्वक चले। और सुनीति माने ईश्वरीय नीति नियमों के आधार पर चले, वो सुंदर नीति वाली। तो तिरुपति की दो पत्नियों की कथानक है, उसके मन में संकल्प चलता है। और कौन सी दो पत्नियां मानी गई? श्रीदेवी और भूदेवी। भूदेवी माना क्या है? भू माना पृथ्वी, पृथ्व्या चौड़ी होती जाती है। क्या चौड़ी होती जाती है? माने जगदम्बा, वो अधर कुमारी है या कन्याकुमारी है? अधर कुमारी। तो ज्यादा चौड़ी अधर कुमारी बनती है या कन्याकुमारी होती है? कुमारी हल्की फुल्की होती है, और अधर कुमारी चौड़ी होती जाती है। ऐसे ही ये पृथ्वी है, पृथ्व्याति माने चौड़ी चक्री होती जाती है। पहले भारत में कन्याकुमारी ही थी, लेकिन जब द्वापर शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आती है, तो दूसरे दूसरे धर्म खंड पृथ्वी से बहुत सागर से ऊपर आ जाते हैं, तो पृथ्वी का विस्तार बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते सब धर्मों की आत्माएं पृथ्वी में प्रत्यक्ष हो जाती, पृथ्वी की गोद में पलती है, इसलिए उसका नाम है पृथ्वी, जगत की अम्बा, जगदम्बा। सारे जगत की अम्बा या सिर्फ सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की अम्बा? सारे जगत की, सब धर्मों की अम्बा, कोई माने या न माने। और उसके मुकाबले है श्रीदेवी। श्री माना श्रेष्ठ, माना देवता, सिर्फ देवता धर्म की देवी, माना कन्याकुमारी, उसको कहते हैं मिस इंडिया। उनके संकल्पों की कहानी दिखाई गई है, और यादगार दिखाई गई है तिरुपति मंदिर में। उनका संकल्प चलता है, श्रीदेवी का क्या संकल्प चलता है संगम युग में, कि प्रैक्टिकल साकार जीवन में इंद्रियों का सुख लेना, मनन मिलन मेला मनाने का पार्ट मेरा नहीं है, प्रैक्टिकल में तो तेरा पति है। असली बात है वो बताना, ईर्ष्या होती है? ये असली बात बताना ईर्ष्या होती है?
नहीं।
तो सही बात कही,
समझ की बात,
समझ की बात कही। फिर वो कहती नहीं, अरे देह से मेरा पति है तो क्या हुआ, मन से तो तेरा पति है, मन तो तेरे पास धरा रहता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात। वो एकलव्य है या दो लव्य है?
एकलव्य।
अगर दो लव्य है तो नारायण पद पा नहीं सकता।
दोनों
है, कोई हैं जगदम्बा की वकालत करने वाले, अब कोई श्रीदेवी की वकालत करने वाले,
नारायण की वकालत करने वाले।
अच्छा,
और माता जी पूछ रही है
हाँ?
वो तिरुपति में कब होती नहीं सलाम वो क्या
है
वो तीन
का लगाते है ना
एक आठ बोलो हाँ
तिरुमला में तिरुपति को वो तीन नाम लगाए ना बाबा
तीर क्या लगाया लकीर दिखाई गई है वो त्रिशूल है त्रिशूल
त्रिशूल
हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान सदैव बुद्धि में रहता है तीसरे नेत्र में भरा हुआ है ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना होती है शंकर द्वारा कैसे ब्राह्मणों की संगमिति दुनिया के असुरों का ब्राह्मण असुरों का विनाश होता है फिर विष्णु द्वारा कैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सूर्यवंशी ब्राह्मणों की पालना होती है वो बात बुद्धि में धरी हुई है सदैव।